कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे Today is the auspicious marriage ceremony of two very special devoted personalities.
आज दो बहुत ही प्रामाणिक सुंदर भक्तों का विवाह संस्कार का शुभ दिवस है.
परमहंस जी Das Prabhu and Aswini Devi. They have come to this temple for the purpose of their marriage because they sincerely want to consecrate their relationship in a spirit of true devotion to Lord Sri Krishna.
Aaj Paramahansa Prabhu aur Aswini Mataji dono अपने विवाह संसार को पवित्र करने के हेतु आज दोनों इस मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इधर पधारे हैं.
मैरिज इज वन ऑफ द ग्रेट नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन.
मानव सभ्यता के लिए विवाह संस्कार अति आवश्यक ऐसी ये वस्तु है.
वी सी ऑल स्पीसीज ऑफ लाइफ are procreating children and expanding the population of that particular species.
हम देखते हैं कि प्रकृति में सब प्रकार के पशु और पक्षी ये भी अपना कुटुंब को मैथुन जीवन के द्वारा बढ़ाते हैं.
They do not waste time with such things as marriage.
पशु पक्षी योनियों में विवाह संस्कार की कोई ऐसी विधि नहीं है.
The plants are pollinating and the insects, fish, lizards, birds and beasts, they are procreating children amongst themselves.
सब प्रकार की अलग अलग योनियां जो है पशु पक्षी छोटे छोटे कीटाणु ये सभी जो है वो संतति की उत्पत्ति करते हैं.
But human form of life is distinguished from the lower species because it provides the opportunity for self-realization.
किंतु मनुष्य जीवन का ये विशेषता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसमें खास संधि मिलती है.
Everyone is encaged by the powers of illusion in this material existence.
प्रत्येक जीव संसार में मोहग्रस्त अवस्था में है.
They are within the cage of material bondage, birth after birth after birth.
वो इस प्रकार के मृत्यु और जन्म के श्रृंखला में जकड़े हुए हैं.
When there is a bird in a cage, there's nothing it can do to escape.
जब भी पक्षी पिंजरे में होता है उसके पास कोई शक्ति नहीं है कि वहां से बाहर निकल सके.
But this human form of life is very special.
किंतु मनुष्य जीवन बहुत ही विशेष जन्म है.
Krishna opens the door to the cage.
भगवान श्री कृष्ण इस पिंजरे के दरवाजे को खोल देते हैं.
And tells the bird of the spirit soul, come out and be free.
और आत्मा रूपी पक्षी को कहते हैं कि आप इस पिंजरे से निकलकर स्वतंत्र जीवन का निर्वाह करें.
No more suffering, no more frustrations.
कोई दुख कोई चिंता की इसमें जरूरत नहीं है.
Enter into your natural environment where the whole sky is free for you to.
बाहर निकलकर स्वच्छंद निसर्ग में आप निर्वाह कर सकते हैं.
But Maya continues to give us the same food in that cage.
किंतु माया अपने को इस पिंजरे में फिर भी अन्न देती रहती है, खाद्य पदार्थ देती रहती है.
In various species of life, she just prepares the food and puts various different spices in it according to what we like.
प्रत्येक योनियों में माया अलग अलग प्रकार का खाद्य पदार्थ इस जीव रूपी पक्षी को पिंजरे में देती रहती है.
But it is the same food, material enjoyment.
लेकिन सभी प्रकार का जो खाद्य पदार्थ पक्षी को मिलता है वो वही है, सिर्फ अलग अलग मसाले डाला जाते हैं.
Puna punas charavata charavanana. Just chewing what we've already chewed so many times, but maybe some different spices.
ये वही खाना है जो हर एक योनि में हम खाते आए हैं, सिर्फ अलग अलग प्रकार के स्वाद के लिए माया अलग अलग मसाले डालती हैं.
And therefore, 99% of human population perhaps, even though the door is open to the cage of birth and death, they won't leave it.
मनुष्य जीवन में जबकि पिंजरे का दरवाजा खुला है, फिर भी 99% जो मनुष्य योनि के लोग हैं वो इसमें से बाहर निकलने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं.
They are not willing to leave this enjoyment.
मनुष्य इस प्रकार के भोग करने की वृत्ति को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है.
But the human form of life is meant for this purpose only.
किंतु आत्मा साक्षात्कार के लिए ही मनुष्य जीवन दिया गया है.
To become free of the cycle of birth and death.
जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु से बाहर निकल सकें.
And enter into the eternal realm of loving service to the Supreme Lord.
जिसके द्वारा हम दिव्य आनंद के का उपभोग भगवान के धाम में कर सकें.
And for this purpose only, God has created marriage within human civilization.
यही मुख्य हेतु है कि भगवान श्री कृष्ण ने विवाह संस्कार का निर्माण किया है.
Where a man and woman come together in a holy place.
जब स्त्री और पुरुष दोनों साथ में आते हैं एक पवित्र स्थल पे.
In the various parts of the world, traditionally marriages were held either in a church or in a synagogue or in some facility of the masjid or in temple.
कई सालों से देखा गया है कि ये प्रकार की ये प्रथा है कि विवाह संस्कार हमेशा कोई पवित्र स्थल में होता है, या तो मंदिर हो, मस्जिद हो, या चर्च हो. यही इस प्रकार का रिवाज चला आ रहा है.
And in the presence of God and an authorized priest, holy vows are taken.
और भगवान और पवित्र साधुओं के सामने पवित्र प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं.
Vows that we are coming together by the grace of God for the purpose of receiving the grace of God through our partnership in service.
इस प्रकार की प्रतिज्ञा की जाती है कि हम दोनों एक साथ में आ रहे हैं ताकि हम इसके द्वारा भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें.
That we will live in harmony with God's will.
कि हम भगवान के निर्देश अनुसार ही अपना जीवन निर्वाह करेंगे.
By living ethical and moral lives.
जिसमें हम सब प्रकार की जो इसमें जरूरतें हैं इसके नियम पालन करेंगे.
And we will be charitable to others.
और हम दूसरों को दान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे.
But today, people, due to the influence of Kali, forget the substance and essence of their own traditions.
किंतु कली के प्रभाव के कारण जो हमारा ये बहुत प्राचीन जो हमारा ये रिवाज है इसको लोग भूल रहे हैं.
This is a very great misfortune.
ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है.
Today marriages have become very fashionable social events.
आज विवाह संस्कार सिर्फ एक प्रकार का शो हो गया है.
Even to the extent in India we have seen The priests are chanting mantras, and the bride and the groom don't even know what he's saying.
देखा जा रहा है कि जो भटजी होता है कोई मंत्रोच्चार करता है, किंतु जो विवाह करने वाले हैं उनको कोई पता भी नहीं होता कि क्या बोल रहा है.
And guests and relatives are gossiping and eating while it's all going on.
मंत्रोच्चार के समय जो अतिथिगण होते हैं सिर्फ खाते रहते हैं और एक दूसरे से गप्पा मारते रहते हैं.
Simply a formality.
इस प्रकार का सिर्फ विवाह एक फॉर्मेलिटी हो चुका है.
Simply a facility for social enjoyment.
एक प्रकार का सामाजिक रूप से आनंद लेने का एक ये कारण बन गया है बस.
But in reality, the institution of marriage has been created by God, by Krishna, to be a time of deep sacrifice, where the man and the woman take lifelong vows of dedication.
किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इस हेतु से विवाह संस्कार नहीं बनाया है. उन्होंने इसलिए बनाया है कि ताकि स्त्री और पुरुष दोनों जीवन भर के लिए परिपूर्ण करने वाले प्रतिज्ञाएं को वो ले सकें.
And people come together to give their blessings and prayers.
और अतिथिगण जो आते हैं वो इसलिए आते हैं कि ये दो स्त्री और पुरुष होते हैं जो शादी कर रहे हैं उनको वो आशीर्वाद दें, अपने शुभेच्छाएं प्रदान करें.
And people celebrate the holiness of the event.
और इस प्रकार से इस पवित्र समय पे लोग एकत्रित होते हैं.
Not that they all come together to eat meat and drink liquor and have party.
इसलिए नहीं कि लोग आके मांस खाएं, शराब पिएं और इस प्रकार से मौज मजाएं.
That does not invite God and the great souls to come and bestow blessings upon the couple.
ऐसे वातावरण में जो कपल होता है उसको भगवान का कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है.
Rather, it invokes a whole another energy to come.
लेकिन ऐसा अगर वातावरण हो तो अलग अलग प्रकार के अपवित्र वातावरण निर्माण होने से बुराइयां निर्माण होती हैं.
This particular temple of Sri Radha Gopinath is one of the great places that Srila Prabhupada has inspired.
ये जो श्री राधा गोपीनाथ का मंदिर का स्थल है ये प्रभुपाद के प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है.
It is based on the sacred principle that human life is exclusively meant for self-realization.
ये मंदिर का एकमात्र हेतु यह है कि लोग समझें कि मनुष्य जीवन का हेतु सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए ही दिया गया है.
And every aspect of life, our occupation, our social responsibilities, our domestic family responsibilities, should all be integrated with our sadhana and with our devotional ideals.
और मनुष्य जीवन में हर एक व्यक्ति को अपने जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थ जीवन की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अपना व्यवसाय है, सबको अपने साधना के साथ उसको निगड़ित करना है.
श्री भगवद गीता does not teach that you go to the temple or the church one day a week, give some donation, offer some prayers, hear some sermon, and then go back into your materialistic life.
गीता का ये वचन नहीं है कि लोग मंदिर में या चर्च में जाएं, सिर्फ कुछ डोनेशन दें, कुछ प्रकार की प्रार्थनाएं करें और दोबारा से अपने अपवित्र और भौतिक जीवन में वापस से व्यस्त हो जाएं.
The influence of Kali is we make various categories.
कलयुग का ये निशानी है कि हम अलग प्रकार के विभाजन करते हैं.
Or in the modern computer terminology, we have different files.
और कंप्यूटर की भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हम अलग अलग फाइलें बनाते हैं.
And we open one up on Sunday and give for our spiritual lives.
और हम सिर्फ रविवार को हमारे आध्यात्मिक जीवन की फाइल को खोलते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं.
And then we close it.
उसको बंद किया जाता है बाद में.
And then we open up another file, our family life, our occupational life, our social life.
फिर हमारे सामाजिक जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन की फाइल अलग अलग दिन पर हम खोलते रहते हैं.
And then we have our hobbies and our athletic tendencies.
और जो हमारे जो अलग प्रकार के स्पोर्ट्स खेलने की प्रवृत्ति है उसकी फाइल को खोलते हैं.
But Sri Bhagavad Gita teaches every aspect of life should be integrated with our spiritual ideals.
लेकिन गीता का ये वचन है कि जीवन के जो अलग अलग सब पहलू हैं उसको आध्यात्मिक जीवन के साथ उसको जोड़ा जाना चाहिए.
The purpose, the goal of everything we do is for Krishna's pleasure.
जो भी हम करते हैं ये सब कुछ भगवान से कृष्ण के आनंद के लिए होना चाहिए.
The home becomes Krishna's temple.
इस प्रकार से हमारा घर एक मंदिर बन जाता है.
The husband, the wife, the children, they're all the servants of Krishna.
और पति पत्नी और बच्चे जो हैं सब भगवान के वो सेवक बन जाते हैं.
We say grihastha ashram.
हम बोलते हैं हमारा गृहस्थ आश्रम है.
Ashram means a place where people live together for the purpose of spiritual progress.
आश्रम का अर्थ ये है कि वो ऐसा स्थल जहाँ पे आध्यात्मिक जीवन के लोग इकट्ठे होते हैं.
If you are going on some holiday, you will know if you go into a hotel, there's no rules and regulations.
अगर आप छुट्टी मनाने के लिए होटल में जाते हैं वहाँ पे कोई नियमों का आपको पालन नहीं करना पड़ता है.
But if you stay in an ashram, you can expect so many rules and regulations.
लेकिन अगर आप आश्रम में ठहरने के लिए जाओगे वहाँ पे आपको अनेक नियम लागू पड़ते हैं.
I remember some years ago, I was walking from Gangotri to Gomukh.
मेरे को याद है कि मैं स्वयं गंगोत्री से गोमुख के लिए मैं उस रास्ते पे मैं चल रहा था.
It's a long walk.
बहुत लंबा वहाँ पे वो फासला है.
It's very cold.
बहुत ठंड है.
And you can go up, but then coming back to get all the way back to Gangotri, it's very difficult.
गोमुख जा सकते हैं लेकिन दोबारा वापस आने के समय बहुत बहुत कठिनाई होती है.
But there's one ashram in the middle between Gangotri and Gomukh.
गोमुख और गंगोत्री के बीच में सिर्फ एक ही आश्रम है.
And almost everyone has to stop and spend the night there because you cannot walk after dark.
यात्रियों को अवश्य ही रात को वहाँ पे ठहरना पड़ता है क्योंकि आप रात्रि को नहीं चल सकते.
And they have so many rules and regulations you must follow.
और उस आश्रम में बहुत नियम वो लोग लगाते हैं.
Doesn't matter who you are, you have to follow, or otherwise you just get put out in the cold darkness of the Himalayas.
चाहे आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो आपको सबको नियम पालन करना पड़ता है नहीं तो आपको वहाँ से निकाल कर ठंड में आपको रात्रि में निकाला जाएगा.
No drinking, no smoking, no meat, no fish, no eggs.
मांस नहीं, अंडे नहीं, शराब नहीं, कुछ नहीं वहाँ पे कर सकते.
No gambling.
कोई प्रकार जुआ नहीं खेल सकते.
You have to take your shoes off before coming in.
जूते निकालने पड़ते हैं अंदर आने के पहले.
You're only allowed to eat the ashram's prasad at the times that they give it.
जिस समय पे आपको प्रसाद दिया जाएगा आपको वही खाना है और कुछ नहीं.
You have to get up for, you have to be there for the evening aarti and you have to get up for mangal aarti.
मंगल आरती और संध्या आरती के लिए आपको अवश्य आना ही है.
I was sick.
मैं बीमार था उस समय.
I had fever.
मुझे बुखार था.
And all sorts of other unmentionable problems.
और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स थे जो आपको बता नहीं सकता.
So I laid down.
तो मैं लेट गया.
And the people of the ashram, get up, you must come for aarti.
आश्रम के लोग आए और कहा चलो उठो आरती के लिए आना पड़ेगा.
So devotee said, he's very sick, just let him rest. They said, no, if he wants to stay in the ashram, the rule, everyone must come for aarti, mangal aarti.
तो आश्रम के लोग आए और कहा कि नहीं आपको यहाँ पे अगर रहना है तो आपको मंदिर में मंदिर की आरती में आना ही होगा.
So when there's an ashram, that means there's rules and regulations for spiritual purification. That is what ashram means.
इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपका आश्रम है तो नियम लागू किए जाते हैं ताकि आपका जीवन पवित्र बन सके.
So according to our Vedic culture, household life is called the grihastha ashram.
इस प्रकार से वैदिक संस्कृति में गृहस्थों का घर जो है उसको गृहस्थ आश्रम बताया गया है.
That means the home is a place where the husband and the wife and the children are living with discipline.
इसका अर्थ यह हुआ कि पति पत्नी और बच्चे उस घर में एक सब प्रकार के शिस्त से रहते हैं.
Not whimsically.
सिर्फ मनगढ़ंत विचारों के द्वारा नहीं.
And for the purpose of that discipline, the purpose of that discipline is spiritual purification, awakening the innate natural love of God that is within the heart.
और शिस्त का कारण का सिर्फ एक ही हेतु है कि हमारे हमारी जो प्रवृत्ति है आध्यात्मिक प्रवृत्ति उसका दोबारा से उसका जागरण हो.
And what does Veda say?
और वेद क्या कहते हैं?
Prahlad Maharaj explained, if your home is not an ashram,
प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर आपका घर आश्रम नहीं है,
then it is andakupam.
तो एक प्रकार का एक बहुत अंधेरे वाला एक कुआ है, वेल है.
With your permission, I will translate andakupam.
आपके परमिशन से मैं अंधकूपम का अर्थ आपको बताता हूँ.
Prahlad Maharaj said it is a deep, dark well.
वो एक ऐसा बहुत ही गहरा और अंधेरा वाला, अंधेरा ग्रस्त कुआ है.
That you just cannot get out.
और उसमें आप नहीं निकल सकते.
And you're thirsty, but there's no proper water.
आप प्यासे लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा.
And you call for help and no one hears you.
आप पुकारेंगे लेकिन कोई आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा.
Very well.
हरे कृष्ण.
Now, what type of people like to live in deep, dark wells?
कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसको इस प्रकार के स्थल में रहने के लिए आनंद होगा?
Frogs,
मेंढक,
snakes,
सर्प,
lizards,
पाल,
insects,
कीटाणु.
But it's not a proper place for human being.
कोई अच्छा स्थल नहीं है मनुष्य के लिए.
But still, even human lives, all over the world, the mass of human society is addicted to living in this deep dark well.
लेकिन हम देखते हैं कि सारे संसार में अधिकतर जो मनुष्य सभ्यता है वो इस प्रकार के अंधकूप में रहते हैं.
So marriage is a spiritual act.
विवाह जो है एक पवित्र आध्यात्मिक वस्तु है.
It is taking serious vows of dedication.
बहुत गंभीरता से प्रतिज्ञाएं ली जाती है.
And what are those vows?
और ये प्रतिज्ञाएं क्या हैं?
To keep Krishna, the Supreme Lord, in the center and the of our relationship and the purpose of our relationship.
सर्वप्रथम प्रतिज्ञा ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण को हमारे संबंध के बीच में उसको रखते हैं.
Paramhamsa ji Prabhu, you should understand that Ashwini Devi is not simply your wife.
परमात्मा आपको ये समझना है कि अश्विनी माता जी सिर्फ आपकी पत्नी नहीं है.
This marriage doesn't mean that there's a negotiation between you and her mother and father, and now she becomes your property.
इस विवाह इस तरह से नहीं हुआ कि आप दोनों माता पिताएं साथ में आए, कुछ चर्चाएं हुई और उन्होंने सबने स्वीकार किया कि ये लड़की अभी आपकी हो गई.
Of course you already know these things.
आपको तो ये सब पता ही है पहले से.
But it is the tradition to speak them anyway.
लेकिन ये रिवाज है कि इस दिन पे इसको बोला जाता है.
She is Krishna's daughter.
अश्विनी माता जी कृष्ण की पुत्री है.
She is Lord Krishna's eternal property.
भगवान श्री कृष्ण की वो संपत्ति है.
And she is very dear to Lord Krishna.
और वो बड़ी प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को.
And Krishna, through the parents, through the spiritual masters, is entrusting her under your care.
कृष्णा उनके माता पिता और गुरु के तरफ से आपको वो सुपुर्द कर रहे हैं देखभाल करने के लिए.
And you should respect her.
और आपको उसको मान देना है.
And protect her.
उसका संरक्षण करना है.
With this understanding.
ये चीज को समझते हुए.
Protect her physical condition by providing her needs.
संरक्षण उनको भौतिक स्तर पे करना है, उनकी सब जरूरतों को पूरा करके.
Protect the needs of her mind through encouragement, appreciation.
और मानसिक रूप से उनका प्रोत्साहन देना है.
And faithfulness.
और उनका श्रद्धा बढ़ाना है.
But most important is protection of her soul.
किंतु सबसे विशेष उनकी आत्मा का संरक्षण आपके हाथ में है.
By giving her all facility, encouragement, and example by which she can grow spiritually and learn to love Krishna.
सब प्रकार के उनके लिए ऐसी व्यवस्था बनानी है ताकि उनका आध्यात्मिक प्रगति होता रहे.
Ashwini Devi, you should know that Paramhamsa is not just a man to vent your frustrations upon, which is usually what wives do in Kali Yuga.
अश्विनी माता जी आपको ये जानना है कि परम प्रभु कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है आपकी पत्नी के रूप में जिसके ऊपर आप अपना जो मानसिक क्रोध और आपकी जो विवशताएं हैं उसको आप उनके पर ढो दें.
Do any of you husbands have this experience?
जो यहाँ पे पतियाँ हैं सब उनको आपको ऐसा अनुभव शायद हुआ होगा.
I have never married in my life, but I do hear these subjects.
हमने स्वयं विवाह नहीं किया है, लेकिन हम ये लोगों से बातें सुनते रहते हैं.
You should see your husband as Krishna's representative.
आपको अपने पत्नी को, पति को भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में देखना है.
Representative of Guru and Krishna.
गुरु और कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में उनको देखना है.
And your duties are to assist him.
और आपको उनको, उनके सेवक बनकर उनकी सहायता करना है.
To always be chaste in your behavior and faithful to your vows to him.
हमेशा पतिव्रता की भावना को अपने हृदय में बनाए रखना है.
And to encourage and support him in his happiness and distress, in his success and failure, in his health or disease, in his youth or old age.
सुख में, दुख में, तारुण्य में और वृद्ध समय पर, उनके यश में, अपयश में, सब प्रकार के अवस्थाओं में उनका साथ और उनकी सहायता करना है.
Sita happily went to the forest for 14 years to remain faithful to Ram.
Sita Devi bade bade anand se Ramchandra ji ke sath mein chale gaye jangal mein 14 varsh ke vanvas ka nirvah karne ke liye.
And Sri Ramchandra fought an entire battle against the entire Rakshasa dynasty to protect Sita.
Ramchandra ji ne ek mahasangram kiya apne patni Sita Devi ko संभालने के लिए असुरों का नाश किया.
Marriage is based on responsibility.
विवाह संस्कार जो है वो जिम्मेदारियों पर आधारित है.
Emotional and physical romance and infatuation comes and goes very fast.
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो रोमांस का जो भावना है, ये तो आता है और चला जाता है.
We are taking vows of lifelong responsibility.
हम जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हैं.
To assist each other in attaining the ultimate and real goal of life, which is unconditional devotional service to Krishna.
अहेतु की भक्ति को प्राप्त कर सकें, इसके कारण हम एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हैं.
And as a team, as a partnership, to become like one body in the service of the Lord and for the upliftment of others.
और दोनों को एक रूप बन जाना है ताकि आप अपना जीवन समाज के लिए और गुरु के सेवा में आप उसको व्यस्त कर सकें.
According to our Vedic scriptures, one of the most essential duties of Grihastha is husband and wife give charity to the poor together.
वैदिक संस्कृति के अनुसार दान देना ये गृहस्थ जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है.
But Lord Chaitanya Mahaprabhu describes what is the best of all types of charity.
चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या वस्तु है.
पर उपकार.
पर उपकार.
To give charity to the poor souls who are bereft of the wealth of their natural inheritance to know God and to love God.
ऐसे प्रकार का दान देना ताकि जो गरीब ऐसे आत्माएं हैं जिनके पास भगवत ज्ञान का धन नहीं है, ये उनको दोबारा से याद दिलाना, ये सर्वश्रेष्ठ दान है.
The rich, the poor, practically all castes and all nations are spiritually in a state of horrible poverty.
चाहे वो गरीब हो या चाहे वो अमीर हो, आध्यात्मिक रूप से प्रत्येक मनुष्य इस संसार में आध्यात्मिक रूप से वो गरीब है.
Therefore, the greatest treasure, the best of all charity that we can give, is knowledge of the absolute truth.
सर्वश्रेष्ठ दान यही है कि हम ऐसे प्रकार के अज्ञान लोगों को भगवत ज्ञान का दान दें.
By our words and by our example, to teach people how to love God.
अपने उदाहरण से, अपने शब्दों से उनके सामने ये ज्ञान प्रस्तुत करें.
How to integrate the spiritual principle of devotional service in every aspect of life.
किस प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ हमारा संपूर्ण जीवन को निगड़ित कर सकें.
And it is that poverty that is the cause of such incredibly complex problems within the world.
इस प्रकार की प्रचंड जो आध्यात्मिक गरीबी है यही एकमात्र मुख्य कारण है क्यों आज इस संसार में इतने बड़े बड़े सब प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं.
So we should take this not as a convenience according to when it is comfortable. We should take it as our duty, as our responsibility to give the charity of bhakti to others by preaching.
तो ये जो आध्यात्मिक दान देना है ये उस समय नहीं देना आपको जब भी आपका जीवन में सब प्रकार की सुविधाएं हों. ये जीवन का सर्वप्रथम कार्य बनना चाहिए.
And this is the glorious opulence of the confluence of these two wonderful families that are marrying today.
और ये बहुत ही प्रशंसनीय है कि दो प्रकार के जो सबसे एक्टिव जो परिवार है नासिक के ना इसमें वो सब लोग दोनों फैमिली जुड़ रहे हैं.
Paramahamsa Prabhu has gone through the authorized Vedic process, something very rare today.
Paramahamsa Prabhu एक प्रकार का जो वैदिक संस्कृति है उसके द्वारा वो उस रास्ते से गुजरे हुए हैं जो कि बहुत ही रेयर है.
He spent many years in the brahmachari ashram.
बहुत सालों के लिए उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में उनका जीवन निर्वाह किया.
Being thoroughly trained in knowledge of the scriptures.
आध्यात्मिक जीवन में सब प्रकार की उनको ट्रेनिंग यहाँ पे प्राप्त हुई.
Learning the glory of simplicity and renunciation.
वैराग्य और सादगी का जो श्रेष्ठ गुण है उन्होंने वो ग्रहण किया.
Giving his very life in the service of others.
और उन्होंने जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया.
He was trained to deeply absorb himself in his spiritual practices of hearing about Krishna and chanting the names of Krishna, worshipping the deity and serving the spiritual masters.
भगवान के बारे में श्रवण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना और गुरु को अपना जीवन संपूर्ण समर्पण करना, इन सब चीजों में उनका ट्रेनिंग हुआ है.
And during that time he became such an empowered and loved preacher of Sanatan Dharma.
और इन वर्षों में उनको प्रकार की एक अद्भुत शक्ति प्रदान की गई भगवान के द्वारा उनका कार्य करने के लिए.
In Bombay, so highly respected for his integrity, his exemplary behavior, and his wonderful enlightening preaching.
बम्बई में उनका बहुत बड़ा मान है, उनका प्रचार कार्य को देखते हुए उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है.
In Thane, he was preaching to college students and bringing so many people to higher and higher states of consciousness.
और थाना में उन्होंने कहीं तरुण लोगों को वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया, ताकि वो और भी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से कर सकें.
And in Nasik, he's influencing hundreds, if not thousands, of people's lives.
और नासिक में तो उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है. सैकड़ों लोगों को वो भगवत भक्ति में प्रवृत्त करते हैं.
रावणा stole Sita from Nasik.
रावण ने सीता को नासिक से अपहरण किया.
Paramhamsa Prabhu has come to bring Sita back to Nasik.
जय हरि ओम. परमहंस प्रभु दोबारा से सीता देवी को नासिक में लाए हैं.
Sita means the spirit of love and devotion.
सीता यानी कि भगवत भक्ति का प्रेम.
So I'm very grateful to him for his wonderful years of devotional service.
मैं अपने हृदय से बताता हूँ कि मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का सेवा प्रदान किया है.
And on this auspicious occasion, it is our great confidence that he will not decrease his spirit of contributing the highest wealth to humanity, but this arrangement he will be enthused to increase his wonderful work.
मेरा यह अटूट विश्वास है कि ये जो विवाह होने जा रहा है इससे इनके कार्य में कोई प्रकार की बाधा नहीं आएगी, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि इनका कार्य इनका प्रचार और भी तेजी से बढ़ने वाला है
And Aswini Devi and her family, so humble, so sincere, always eager to serve Krishna, the devotees, and whoever they come in contact with.
और अश्विनी माता जी और उनके परिवार को हम देखते आ रहे हैं किस प्रकार से वो सब प्रकार के कार्य करने के लिए सेवा में मदद करने के लिए वो हमेशा प्रवृत्त रहते हैं उत्साही रहते हैं
They have given so much of their lives energies for Sunday school teaching children and for just going doing whatever is required to assist Paramhamsa and the Vaishnavas in serving Lord Krishna and giving his message to the people of Nasik
Sunday school chalate hain aur Paramhamsa Prabhu ko madad karne ke liye jo bhi karya avashyak hai wo sadaiva karne ke liye hamesha taiyar rehte hain
So this marriage has been agreed upon on the basis of very high, noble spiritual ideals.
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो विवाह है, बहुत उच्च प्रकार के स्तर पे उनका मैरिज का जो कैटेगरी है, बहुत हाई लेवल के कैटेगरी का मैरिज है.
And it is for that reason they have decided to take their holy vows before their worshipable deities, Radha Gopinath. In this holy place.
इस प्रकार के उच्च प्रकार का ये मैरिज होने के कारण उन्होंने ये तय किया कि हम भगवान के सामने ही हमारी प्रतिज्ञाएं को स्वीकार करेंगे.
It is a very happy moment for all of us.
ये हमारे सब के लिए बहुत आनंद का समय है.
I sincerely pray to Sri Radha Gopinath to shower their unlimited mercy upon you.
मैं प्रामाणिक रूप से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राधा गोपीनाथ इन दोनों पर हमारे उनके सब प्रकार के सब आशीर्वाद उनको प्रदान करें
The greatest charity in this age of Kali is to inspire people to chant the holy names.
सबसे बड़ा दान कलयुग में है कि हम लोगों को हरि नाम लेने के लिए प्रोत्साहित करें
The wealth of ecstatic love of God is within our hearts.
शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में सोया पड़ा हुआ है
But the Maya or illusory energy has just shut closed that great treasure and locked it, and we can't see it, we can't experience it.
लेकिन माया के प्रभाव के कारण हृदय में ये हमारा जो शुद्ध भक्ति का प्रेम हृदय में जकड़ा हुआ है और उसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं.
Have you ever seen combination locks?
आपने कभी कॉम्बिनेशन लॉक को देखा है
Where you dial the numbers.
आपको नंबर डायल करना है पहले
इन डिफरेंट एजेस कृष्ण चेंजेस द कॉम्बिनेशन टू ओपन दैट ट्रेजर ऑफ लव ऑफ गॉड
अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग नंबर देते हैं कॉम्बिनेशन लॉक को खोलने के लिए
इन सत्य युग टू ओपन दैट लॉक यू हैव टू परफॉर्म 60,000 ईयर्स ऑफ मेडिटेशन
सतयुग में ये जो ताला है उसको खोलने के लिए आपको 60,000 वर्ष के लिए तपस्या करना होगा तब भगवत प्रेम प्राप्त होगा
In Treta Yuga to open that shut box where the treasure of ecstatic love is contained we have to perform massive sacrifices
Treta Yuga में इस भगवत प्रेम के ताले को तोड़ने के लिए आपको बलक बड़े प्रकार के यज्ञ करने पड़ेंगे
In Dwapara Yuga perfectly conducted worship of the temple
और द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा आपको प्रामाणिक रूप से करना होगा
But in Kali Yuga, the combination is Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare
Hare. Kalero dosani de raja nasti hek mahan guna kirtana reva krishnasya mukta sanga param brajet. Kali Yuga is an ocean of faults, but there's one benediction. Simply chanting Krishna's name, we can attain the supreme perfection of liberation.
और कलयुग में इस भगवत प्रेम को व्यक्त करने के लिए सबसे बड़े अलग प्रकार का दोष कलयुग होने पर भी एक महागुण यह है कि सिर्फ हरिनाम करने से यह भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है
So please, live your life in such a way that you can be in the proper state of consciousness to sincerely chant the holy names together
तो मेरा निवेदन यह है कि आप दोनों इस प्रकार का जीवन निर्वाह करें ताकि आपका मन सदैव हरि नाम लेने के लिए प्रवृत्त रहे और इस प्रकार का जीवन का आनंद आप सबसे बांट सके, ये हमारा निवेदन है, आशा है।
On behalf of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and all of our previous acharyas, we wish you all the most prosperous blessings of Sri Radha Gopinath Ji.
मैं श्रील प्रभुपाद और हमारे सारे जो पूर्व आचार्य हैं उनकी तरफ से ये आप आशीर्वाद देता हूँ कि उनके सब प्रकार के सबसे शुभ जो आशीर्वाद हैं आपके दोनों के जीवन में हमेशा ही बरसते रहें।
And everyone who is gathered today, please, from your hearts, pray to the Supreme Lord that they will truly bestow their blessings and mercy upon Paramhamsa, Prabhu and Aswini Devi.
और आप सब जो यहाँ पे उपस्थित हुए अतिथिगण हैं आप सबसे ये निवेदन यह है कि आप भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ से हृदय से प्रार्थना करें कि उनके सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद हैं वो परमहंस प्रभु और रश्मि माता को प्राप्त हो।
Let us express our affection for them by invoking the mercy of the Lord by loudly chanting the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
इस प्रकार से भगवान को कृपा याचना करें कि हरि नाम के द्वारा इन दोनों को आशीर्वाद मिले।
Much louder, please.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
You have made everyone very happy.
आप दोनों ने सबको बहुत आनंद दिया है।
I congratulate and thank you very much.
Congratulations.
Is that a Hindi word?
Abhinandan. आप दोनों को हमारा अभिनंदन है।
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण।